हाँ चैतन्यन्द्र, तमे थोर आप
हिंदी
हाँ गुजराती के हिंदी में बोल सो,
में, हिंदी
हिंदी में ओके। आप
में
थोड़ा सा
बोल, हिंदी में
अपना,
बोलूंगा।
हाँ अच्छा, आप थोड़ा सा अपना परिचय शुरू में पहले देंगे प्लीज,
चालू
और फिर शुरू करेंगे।
करूं?
हाँ 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 करो।
त्रिकालवर्ती सर्वज्ञ भगवंतों को नमस्कार करते हुए आप सभी को जय हिंद। आज का मेरा विषय ये रहेगा कि जीव ने अनंत काल में सब कुछ किया, वृद्ध लिंग धारण करके और नौवीं ग्रह गया, जो कि मिथ्या दृष्टि की उत्कृष्ट सीमा है। शुभ भाव की इसमें, शुभ भाव इसमें किए, अनंत बार दीक्षाएं धारण की, अनंत बार शास्त्र अध्ययन किया, 11 अंक तक पढ़ा, 9 पूर्व तक पढ़ा, लेकिन फिर भी इसका संसार से परिभ्रमण समाप्त नहीं हुआ। तो हम लोगों को ये विचार करना चाहिए कि फिर क्या कमी रह गई। इस विषय में श्रीमद जी को मैं अभी याद करूंगा एक लाइन में, कि उन्होंने लिखा है, नियम नियम संयम आप कियो पुनि त्याग विराग रखा बलियो। तो ये जो आगे की लाइन है, उन्होंने उसी कक्षा का वर्णन किया है कि इतना सब कुछ किया फिर भी क्या बात बाकी रह गई, एक विचार। तो इसी विषय के अंदर श्रीमद जी कहते हैं कि सबसे बड़ा दोष अगर जीव का अनंत काल में रहा है तो मोक्षुता उत्पन्न नहीं हुई। तो मोक्षुता उत्पन्न नहीं हुई, यही सबसे बड़ा दोष जीव का है, बाकी इसने सब कुछ किया है। ज्ञान के मार्ग में देखिए तो 11 अंग 9 पूर्व तक की जो हाइएस्ट चीज है वो इसने पढ़ी। त्याग के हिसाब से देखिए तो वृद्ध लिंग धारण किया, दिगंबर मुनि बन करके, जिसके बारे में शास्त्र में आता है कि सुमेरु पर्वत भी छोटा पड़ जाए अगर इसके पीछे और कमंडल का ढेर लगाया जाए तो अनंत काल में इस जीव ने क्या बाकी रखा। तो श्रीमद जी कहते हैं कि इसका सिर्फ एक ही दोष है इस जीव का, कि इसने मोक्ष का अर्जित नहीं की। तो मोक्ष का अर्जित क्यों नहीं हुई, कि उसने बाह्य के पदार्थों के अंदर सुख बुद्धि मांगी, अपना सुख का विषय बाह्य के पदार्थ है, इसी में ये सुख की खोज के अंदर उसी में लगा रहा, और बाह्य पदार्थों को लेना गिनाना इकट्ठे करना उनको भोगना, बस इसी के अंदर इसने अपना कल्याण मान लिया और इसने सुख मान लिया। लेकिन ये गलत है, क्योंकि श्रीमद जी कहते हैं कि अल्प की मोहाशक्ति का होना वो सबसे बड़ा दोष है मोक्षता को उत्पन्न करने में। मोहाशक्ति का मतलब ये है कि ये मेरी स्त्री है, ये मेरा शरीर है, ये मेरा पुत्र है, ये मेरी संपत्ति है, ये मेरा ज्ञान है, ये मेरा ये है, ये मेरा सक्षम है, मैं इतना जानकार हूँ, मैं इतना शास्त्र जानता हूँ, ये सारी चीजें जो ये जीव करता है इसके अंदर इसको मोहाशक्ति के परिणाम होते हैं, तो इसमें इसको दुख लगना चाहिए, तो ये दुख लगता नहीं है इसको। इसको तो अशुभ भावों में ही दुख नहीं लगता है। तो शुभ की तो बात ही क्या है, जबकि जिनेन्द्र मार्ग के अंदर अशुभ का तो प्रकरण ही नहीं है, यहाँ पे बात ही शुभ से है कि शुभ का ही इसको दुख लगना चाहिए, वो इसको दुख नहीं लगता। तो अनंत काल में इसने अपने वेदन के अंदर कभी नहीं देखा कि मेरे वेदन में क्या हो रहा है, दुख हो रहा है, आकुलता हो रही है या निराकुलता हो रही है। तो निराकुलता और आकुलता दो ही चीज परिणाम का सत्व है भाव में, और दूसरी कोई चीज नहीं है, या तो आकुलता है या निराकुलता है। तो आकुलता तो कब होती है कि जो भाव का अवलंबन लेता है, और निराकुलता कब होती है कि जो स्वयं का अवलंबन लेता है। तो ये मार्ग इतना सुगम है फिर भी जीव ने अपने अभिप्राय के अंदर सुख का अभिप्राय पर के अंदर मान करके और परिचय को प्रतिबद्ध होकर के वो अटक गया। इसलिए कोई अपना ये मोक्षता भी उत्पन्न नहीं हुई, और इसको वर्तमान के अंदर वेदन में जो दुख है आकुलता है वो भी इसको भाषित नहीं होती। आकुलता इसको क्या लगती है कि इसकी इच्छित चीज न मिले तो इसको आकुलता लगती है, लेकिन इच्छित चीज मिल जाती है तो इसको आकुलता नहीं लगती। लेकिन यहाँ तो कहते हैं कि ऐसी मोहाशक्ति के परिणाम होते हैं तो इसमें इसको आकुलता होनी चाहिए। इसको श्रीमती ने कहा कि यही सबसे बड़ा दोष है इस जीव का, इसमें मोक्ष अनंत काल में एक भी बार अर्जित नहीं। तो मोहाशक्ति के परिणामों से अकुला कर एकमात्र मोक्ष के लिए यत्न करे वही मोक्षता है। तो यानी मोक्ष के लिए मतलब कि ये जो वर्तमान के अंदर जो भी कुछ भाव है उनसे मैं परद्रव्यों पर भावों से मुक्त हूँ और अपने निजी आत्मा है उसकी मैं प्राप्ति करूँ, इसकी शुद्धात्मा को प्राप्त करूँ, यही मोक्ष है। तो अपने परम पद की प्राप्ति की चाहिए वो इस जीवन में अनंत काल में कभी ऐसी भावना नहीं थी, और जो भी कुछ किया वो बाह्य के लक्ष्य से इसने किया है और इसीलिए जीव प्रदर्शन कर रहा है। तो मोक्षता उत्पन्न नहीं हुई तो इसके लिए हमारे गुरुदेव ये कहते हैं कामी स्वामी कि जिसको वर्तमान में दुख नहीं लगता, यानी वर्तमान में नहीं, वर्तमान में जो भी कुछ भाव हो उसको शुभ या अशुभ, तो अशुभ की तो कफाई जैन धर्म में नहीं है, तो सुख सुख के अंदर भी इसको जो भाव होते हैं उसमें इसको दुख लगना चाहिए। तो गुरुदेव ये कहते हैं कि जिसको वर्तमान में दुख नहीं लगता वो तत्व श्रवण का अधिकारी नहीं है। अब आज का मेरा विषय मतलब न्याय श्री सोरानी जी के बारे में, तो उनका मैं एक शब्द याद करता हूँ, तो उन्होंने कहा है कि विकल्प मात्र में भट्टी जैसा दुख लगना चाहिए। तो उन्होंने ये नहीं कहा कि विकल्प संसार के या विकल्प आत्मा के, उन्होंने तो शब्द यही रखा है कि विकल्प मात्र में दुख लगना चाहिए। तो जिसको कांजी स्वामी ने कहा कि वर्तमान भाव में जो भी भाव हो उसके अंदर अगर दुख नहीं लगता है तो तत्व श्रवण का अधिकारी नहीं है। तो सभी महात्माओं का एक ही वर्जन है, एक ही व्यू है कि हे जीव तू अपना कल्याण चाहता है तो तू अपने वर्तमान वेदन को देख, ज्ञान में तू मानता है कि दुख है लेकिन वेदन से स्वीकार नहीं करता है कि दुख है। तो जानना अलग चीज है और वेदन अलग चीज है। तो वेदन के अंदर अगर इसको दुख लगे तो ये वहां से छूटे बिगड़ है नहीं सकता। तो अपने सामने प्रश्न ये है कि तो ऐसा क्या किया न्यायचंद्र जी सोगानी जी ने कि जिन्होंने एक गुरुदेव का पूरा प्रवचन नहीं लेकिन प्रवचन की आधी लाइन सुन करके अपना जीवन का उन्होंने उद्धार कर लिया, जीवन सफल कर लिया, तो वो क्या था, क्या चीज हुई, कैसे बना? क्या ऐसा भी संभव है कि जो संसार के अंदर है और वो जीव अपना के एक प्रवचन सुने और उसके अंदर अपना अनंत भाव का उसने निर्वाह कर दे, तो ऐसी क्या चीज सोगानी जी लेकर के समझ आए? तो मेरा ये कहना है कि सोगानी जी मोक्षता लेके आए थे। हम लोग समोसरण में गए मोक्षता लेके नहीं गए, कुतूहल लेके गए, शोकम लेके गए, जानकारी लेने गए, और कुछ करने गए, लेकिन मोक्षता लेके नहीं गए कि मेरे को आत्मा ही चाहिए और दूसरा इस जगत के अंदर से कुछ नहीं चाहिए। ये चीज लेकर के अगर हम समोसरण में जाते तो आज हम लोग यहाँ नहीं, ये निश्चित बात है कि हम लोग मोक्षता के बिगर ही आज तक जो भी कुछ करते आए हैं या कर रहे हैं वो मोक्षता के बिगर करते हैं। और मोक्षता सिर्फ एक ही है कि अपनापन जहाँ भी होता हो, एकत्व का परिणाम जहाँ पर भी हो, ये मेरा है, वो ही भाव मोह की आसक्ति है और वही भाव मोक्षता को रोकता है और वो जब तक ये भाव रहता है तब तक मोक्षता उत्पन्न नहीं होती। तो न्याय मुनि सोवान जी को क्या था कि वो जो भी कुछ करते थे, जो भी कुछ उनको विकल्प आता था, तो संसार के विकल्पों का तो यहाँ इस मार्ग में कठिन नहीं है, तो लेकिन जो भी उन्होंने आत्मा संबंधी विचार वगैरह जो भी कुछ करते थे, शास्त्र पढ़ते थे, पूजा भक्ति करते थे, सब भावों के अंदर उनको आकुलता रखती थी। उनकी खोज यही रहती थी कि मेरे को सुख कैसे मिले, यही समस्या उनकी जिंदगी की थी। और ये समस्या अगर हम लोगों की अगर जिंदगी की बन जाए तो हम लोगों का निजरा हो सकता है। क्यों कि सुख आत्मा में है, सुख बाहर में है नहीं। तो मेरा सुख अगर मेरे में है, अगर ऐसा अभिप्राय मेरे में बन जाए तो फिर बाह्य पदार्थों पर तो विराम लग गया, बाह्य पदार्थों से कोई मतलब ही उसको नहीं रहा। तो बाह्य पदार्थों से कुछ नहीं रहा तो बाह्य पदार्थों के प्रति जाता उपयोग उसका भी कोई मतलब नहीं रहा, वो भी ऐसा आतंक वाला है। तो उनकी सबसे बड़ी विशेषता यह रही न्यास सोगानी जी की, जो गुरुदेव के आने के पहले, गुरुदेव के पास आने के पहले उनकी जो विशेषता रही वो ये थी कि वो तीव्र मोक्षता लेके आए थे। उनको चलते प्रणाम में, जैसे गुरुदेव कहते हैं जिसको वर्तमान में दुख नहीं लगता वो तत्व श्रवण का अधिकारी नहीं है, लेकिन वो अधिकार लेके आए थे क्योंकि उनको वर्तमान में दुख लगता था, हर भाव में उनको दुख लगता था, आत्मा संबंधी विचार हो, भगवान संबंधित विचार हो, पूजा पाठ हो, तत्व चिंतन मनन का परिणाम हो, कोई भी विचार हो, इसके अंदर उनको आकुलता लगती थी, उनको ये लगती थी कि शांति कहाँ है इसमें, इसमें कहीं शांति नहीं है और उनको शांति की खोज थी। तो उनको वो खुद लिखते हैं कि मेरे को तो शुरू से ही ऐसा होता था कि जो भी कुछ विकल्प होते थे इसके अंदर भक्ति जैसा उनको वेदन लगता था, दुख लगता था कि विकल्प में कथा की भक्ति जैसा दुख लगता था। ये चीज देखिए कि विकल्प मात्र में कसाय की भक्ति जैसा दुख लगना, ये चीज क्या है? तो ये दुख लगता है या दुख जानने में आता है? तो जानना तो बहुत किया हम लोगों ने शास्त्रों से कि राग में दुख है, राग में मलिनता है, राग में आकुलता है, राग दुख का कारण है, ये जाना। लेकिन वेदन से नहीं स्वीकारा कि वेदन में भी आकुलता लगती है क्या? तो सोगानी जी ने अनुभव पद्धति में, वो ज्ञान पद्धति में नहीं गए, जानकारी की पद्धति में नहीं गए, अनुभव की पद्धति में गए, जिसको अपन वेदन कहते हैं, वो वेदन की पद्धति से गए और वेदन की वेदन से उन्होंने यह प्रमाणित किया कि ये वास्तव में भट्टी जैसा दुख है। अब वो जैसे अब भट्टी जैसा दुख लगे तो वो जीव सुख की खोज को कैसे छोड़ सकता है? जब तक उसको सुख नहीं मिलेगा तो उसको हर भाव में दुख ही लगता है। तो हर भाव में जब दुख लगता है और सुख उसको मिलता नहीं है तो सुख के लिए कितना छटपटाता होगा, कितना तरसता होगा, कितना उसके लिए प्रयास करता होगा। तो न्यायचंद्री सोगानी जी ने अपनी जिंदगी में ज्ञान दशा प्राप्ति के पहले ऐसा कोई भी चीज नहीं रखी, चाहे वो शास्त्र की लाइन हो, चाहे भगवान की पूजा भक्ति की लाइन हो, चाहे दूसरी लाइन हो, चाहे ध्यान की लाइन हो, उन्होंने सारी लाइनों को उन्होंने देखा लेकिन किसी के अंदर उनको शांति नहीं मिली। तो बस ये शांति की खोज के अंदर उनको यही चलता रहता था कि फिर ये दुख का निषेध कौन करता है, ये कौन है, ये कौन है, वो कौन है? तो उनका उपयोग उस कौन को खोजने में लग गया, वो कौन है उसको खोजने में उनका उपयोग लग गया। तो बाकी सभाओं में सो वो रस व्यक्त हो गया, कोई भी प्रकार का लौकिक रस तो सवाल ही नहीं है, लेकिन वो जो शास्त्र वगैरह का या स्वभाव का जो रस है वो भी समाप्त हो गया। सिर्फ एक ही चीज रही कि चलते परिणाम में यानी विकल्प मात्र में भट्टी जैसा दुख लगता था और वो भट्टी जैसे दुख का जो निषेध करने वाला परिणाम जो आत्मा का जो भाव है वो पकड़ में नहीं आता था कि ये कौन है जो इसका निषेध करता है। तो उसकी खोज थी कि वो कौन है, यानी कि मैं कौन हूँ। श्रीमद जी कहते हैं मैं कौन हूँ, तो वो ये खोजते थे सोवानी जी कि मैं कौन हूँ। जो इसका निषेध आता, अगर स्वभाव होता, अगर आकुलता ही मेरा स्वभाव होता तो फिर तो इसका निषेध नहीं आता ना। स्वभाव का कभी निषेध नहीं आता, स्वभाव तो हमेशा ही सुखरूप है, इसलिए वो दुख का निषेध करता है। तो दुख भी एक न्याय से सुख की प्रसिद्धि करता है, यानी सुख स्वभाव की प्रसिद्धि करता है। सोगानी जी इसी सुख भाव यानी आत्मिक भाव की खोज में लगे हुए थे कि वो कैसे प्राप्त हो, इसीलिए उस भाव की प्रधानता उनकी जिंदगी में मोक्ष दिशा के अंदर ज्ञान दशा के पूर्व में निरंतर बनी रही और उनको किसी भी परिणाम में रस नहीं आता था। उनको अपने शहर के परिचित रस्तों के अलावा का परिचय नहीं, मेरे कौन कितने बच्चे है, कौन सी स्कूल में पढ़ते हैं, कौन सी क्लास में पढ़ते हैं, कौन से नंबरों से पास होते हैं, उनको कोई पता नहीं रहता। घर में क्या है क्या नहीं है, उनकी क्या व्यवस्था करनी है, क्या व्यवस्था होनी चाहिए, भविष्य का क्या होना चाहिए, ऐसा कोई भी उनको ख्याल नहीं रहता था, ना उनको भान रहता था। उनका तो एक ही भान था, वो कौन है, यानी कि मैं कौन हूँ, यानी सुख मेरा सुख कहाँ है। तो सुख की खोज के अंदर निरंतर लगे हुए थे और जो भी परिणाम होते थे उसके अंदर करने का भाव वो उनको मरने जैसा लगता था, कि जैसे चिंतन करूं ये भी उनको मरने जैसा लगता था, पूजा करूं ये भी उनको मरने जैसा लगता था। सिर्फ उनका एक ही लक्ष्य था कि मेरा सुख मेरे में है तो वो सुख है का वो कैसे प्राप्त हो। इतनी भूमिका लेकर के वो सोंगल आए थे। उसके पहले सोंगल आने के पहले आप ये विचार कीजिए कि जिसको अपने परिवार के सदस्यों का पता नहीं है कि वो कौन से स्कूल में पढ़ते हैं, कितने नंबरों से पास होते हैं, और हम लोग अपनी जिंदगी से अगर इसका तुलना करें तो हम लोग कहाँ खड़े हैं और मोक्ष का हम लोगों से कितनी दूर है, इसका एहसास अपने को सोगानी जी की जिंदगी से मिल सकता है कि सोगानी जी की जिंदगी में मोक्षता का प्रकरण कितना महत्वपूर्ण है हमारे लिए समझने के लिए। वो तो उन वो चीज तो उनके पास उनकी रही, लेकिन हमको क्या फायदा सोगानी जी को समझने से, कि सोगानी जी की ज्ञान दशा तो अलग बात है, उसकी चर्चा तो अलग है, कि क्योंकि ज्ञान दशा तो सारे ज्ञानियों की एक ही होती है, आत्मा एक है, उसका अवलंबन का मार्ग एक है, और अवलंबन से होता शुद्ध भाव वो एक ही है, इसलिए सारे ज्ञानियों का अनुभव तो एक ही है, तो वो बात तो अलग है कि सारे ज्ञानियों का जब अनुभव एक है तो अनुभव वाली बात वो अलग चीज है, लेकिन मूक वो अनुभव तक पहुंचे कैसे, ये सारे मोक्षों के जो भी जीव है उसके सामने समस्या बनी रहती है कि मेरा सुख मुझे कैसे मिले। तो इसके लिए कर्तृत्व भाव में उनको जो दुख लगता था, यानी पर्याय बुद्धि दृढ़ होती है, मैं मोक्ष प्राप्त करूं ऐसा भाव, ऐसी ऐसा कर्तृत्व ये भी पर्याय बुद्धि को दृढ़ करता है, मैं ये पूजा करूं, मैं शास्त्र पढ़ूं, ये शास्त्र सुनूं, मैं सत्संग करूं, इसके अंदर पर्याय बुद्धि दृढ़ होती है और इसमें संसार परिभ्रमण बढ़ता है, घटता नहीं। मैं सुनूं, मैं सुनाऊं, मैं पढ़ूं, मैं पढ़ाऊं, ये सारे भाव आकुलता वाले हैं, और जिसको इसमें संतुष्टि होती है कि मैं कुछ कर रहा हूँ, उसकी पर्याय बुद्धि दृढ़ हो जाती है, दर्शन मोह तीव्र हो जाता है। तो सोगानी जी क्या करके आए थे कि दर्शन मोह को क्षीण करने की स्थिति के अंदर वो यहाँ आए थे, और दर्शन मोह ही जीव के अंदर मोह शक्ति के परिणाम करता है कि जहाँ वो खुद नहीं है वहां पर वो खुद मानता है कि मेरा सुख यहाँ है, मेरा सुख यहाँ है, तो कभी एक विषय को सुख मानता है फिर उसको छोड़ देता है, विचार नहीं करता है कि एक समय तो सो समय, अगर एक समय भी जिस चीज में सुख है तो उसमें मेरा सुख हमेशा के लिए होना चाहिए, और सुख का नियम भी यही है कि जहाँ अगर सुख एक समय के लिए है तो वहाँ सर्व समय के लिए वहाँ सुख है, तो मैं कभी किसमें सुख मानता हूँ फिर उसको छोड़ देता हूँ, कभी किसमें सुख मानता हूँ फिर उसको छोड़ देता हूँ, तो मेरी ये आकुलता बनी रहती है, अतृप्ति बनी रहती है, विरक्ति होती नहीं है, इसका मतलब क्या हुआ, इच्छा बनी रहती है तो इच्छा स्वयं आकुलता है, ये विचार नहीं करता, ध्यान नहीं देता, उसको सही डायरेक्शन नहीं मिलता कि मेरे को अब करना क्या चाहिए, तो करना ये चाहिए कि जो सोगानी जी ने किया कि उन्होंने मोक्ष जैसा इतनी सबल उन्होंने अपने में उत्पन्न की, उत्पन्न की ये कहना भी एक उपचार है, वास्तव में तो ये उत्पन्न हो जाती है कि जहाँ सुख की खोज हो और मुझे मेरा सुख चाहिए ऐसा अभिप्राय अगर बन जाता है तो बाकी सारे काम सुगम है। सबसे आसान काम कोई दुनिया में है तो पैसे कमाना, ये कोई आसान काम नहीं है, पढ़ना ये कोई आसान काम नहीं है, परीक्षाएं पास करना ये कोई आसान काम नहीं है, लेकिन आत्म प्राप्ति सबसे आसान काम है, क्यों इसके बीच के अंदर कोई भी चीज नहीं है, क्योंकि क्षोत्सम होगा कटाई होगी, तो क्षोत्सम तो पूर्वाधीन है, पूर्व कर्म के अधीन है, वर्तमान तो पैसा कमाऊ ये कोई वर्तमान का पुरुषार्थ नहीं है, पूर्व जन्म के अंदर जो कुछ करके आया उसका फल है, तो मैं उसको संयोग के अंदर से कहीं उसको मिलता है, और मैं कोई पर पदार्थों के अंदर जो लक्ष्य का भाव जाते हैं उसमें उसको कुछ मिलता है, मिलता क्या है कि वो इन सबसे विमुख होए और ये निर्धार करे कि मेरा सुख मेरे में है, उसी दिन से इसका अभिप्राय बदलता है, अगर जिस दिन से इसका अभिप्राय बदल जाता है कि मेरा सुख मुझ में है, मेरे सुख के लिए मुझे किसी बाह्य अवलंबन की जरूरत नहीं है, बाह्य का जो अवलंबन है वो तो संसार वर्धक है, जिस दिन इसका ये अभिप्राय बदलता है उसी दिन से मोक्षता का प्रारंभ हो जाता है, और जैसी जैसी ये अभिप्राय की दृढ़ता होती है वैसे वैसे इसकी मोक्षता वर्धमान हो जाती है, और जैसे इसकी मोक्षता वर्धमान होती है वैसे वैसे इसका दर्शन वो क्षीण होता जाता है, और पर पदार्थों में जो एकत्व, पर पदार्थ में जो ममत्व, और पर पदार्थों की जो कृतत्व बुद्धि है, पर्याय बुद्धि है, वो क्षीण होती जाती है, और ये भी प्राय दृढ़ होता जाता है कि मेरा आत्मा ही सुख रूप है, अब मेरा आत्मा और मैं तो दो चीज तो नहीं हूँ, मेरा आत्मा वही मैं हूँ, और जब मेरा सुख मुझ में है तो फिर मैं उस सुख के लिए बाहर क्यों जाता हूँ, किसमें जाऊँ, कहाँ मिलेगा, जब मेरा सुख मुझ में है, मेरा सुख तो सिद्ध भगवान में भी नहीं है, सिद्ध भगवान का सुख सिद्ध भगवान में है, मेरा सुख मुझ में है तो सिद्ध भगवान का सुख मुझे कोई काम नहीं देता, तो फिर मेरा सुख मुझे काम देगा, तो मेरा सुख मेरे में है, ये जैसे जैसे ये जीव आगम से युक्ति से न्याय से और फिर अनुभव से प्रमाण करे, जिनको समय सार केंद्र कहा है, इन्हें एकत्व विवेकात्मा दर्शाऊंगा, लेकिन तुम अपनी अनुभूति से इसको प्रमाण करना। तो सेवानी जी ने यही किया कि उन्होंने किसी तर्क से दुख नहीं माना, किसी युक्ति से दुख नहीं माना कि विकल्प में दुख है, उन्होंने वेदन से माना, यानी कि अनुभव से माना, यानी उन्होंने कुंद कुंदाचार्य की आज्ञा को सिरोधार्य किया कि अनुभव से प्रमाण करो। तो उन्होंने अनुभव से प्रमाण किया कि इसमें आतुरता है, इसमें दुख है। ऐसा एक जीव हमारे बीच में हुआ, हमारा अवभाग्य है कि हम उनके संपर्क में आए, उनकी बातें सुनी, उनको देखा, लोगों ने समझा कि अरे ये क्या बात है, हम लोग इतने घंटों तक सुनते हैं, मनन करते हैं, चिंतन करते हैं, संसार की सारी प्रवृत्तियों से विमुख हो रहे हैं, फिर क्यों मेरा सुख मुझे क्यों नहीं मिला? क्यों? कि आकुलता को इस जीव ने सुख मान लिया। आकुलता है इच्छा में कि मैं किसी भी पदार्थ को पाऊं, ये स्वयं आकुलता वाला भाव है। तो फिर आकुलता से दूर होगी नहीं हो सकती। क्या खून का दाग खून से साफ होगा? नहीं, इसके लिए साबुन पानी चाहिए। तो इसी प्रकार से जिस जीव को अपना कल्याण करना हो, इसको सर्वप्रथम मोक्षता अर्जित करना चाहिए कि विकल्प मात्र में भट्टी जैसा दुख लगे, तभी इस जीव को सुख की खोज होगी। लेकिन जब सुख की खोज और इधर आकुलता विकल्प मात्र में आकुलता, ये दोनों चीज अस्थि और नास्ति दोनों साथ होती है, तब वो मोक्षता यथार्थ कहलाती है। धारणा में मान ले, श्रम से मान ले कि आग में आतुलता है, लेकिन राग हो जाता है, रस आ जाता है, अरे यहाँ तक कि अशुभ में रस पड़ जाता है, और ये जीव मानता है कि इसमें दुख है। लेकिन ये क्या हुआ, दुख लगा तो तुम दुख में कैसे खड़े रह सकते हो? जिसको दुख लगे और दुख में खड़ा रहे कैसे बन सकता है? ये संभव ही नहीं है दुनिया में कि जहाँ पर दुख लगे और ये जीव वहाँ खड़ा रहे, अरे देखेगा ही नहीं। तो इसको वास्तव में सोगानी जी को क्या था, सुख की खोज थी। वो कौन है जो इस दुख का निषेध करता है, वो कौन है जो दुख का निषेध करता है? वो था सुख स्वभाव, जिसका उनको पता नहीं था। इसके लिए ज्ञानी की एक देखना की जरूरत पड़ती है, कब कि जब जीव ऐसी स्थिति में पहुंचता है तब उसको ज्ञानी उपकारी होते हैं। हम लोगों को ज्ञानी मिले समोसरण में गए, लेकिन बिना जरूरत के कोई प्रॉब्लम लेते नहीं गए कि मुझे ये आकुलता है कैसे मिटे, हे भगवान ये आकुलता से मेरी मुक्ति कैसे हो, और मेरा परम पद जो निराकुल है वो मुझे कैसे प्राप्त हो, ये प्रश्न लेकर के हम लोग कभी समोसरण में नहीं गए। अनंत बार समोसरण में गए, अनंत बार ज्ञानियों के पास गए, अरे खुद मुनि बने, लेकिन ये प्रॉब्लम लेकर के कोई चीज हम लोगों ने नहीं की। अनंत काल में अगर वर्तमान से अगर अपन को अनंत काल नक्की करना हो, तो आज सुबह से हमने जो भी पूजा भक्ति पाठ स्वाध्याय चिंतन मनन आत्मा का जो भी कुछ किया, शास्त्र पढ़ा, जो भी कुछ किया दिन भर में, उससे मालूम पड़ सकता है कि हमने अनंत काल ऐसे बिताया है। जैसे आज बिता है वैसे ही अनंत काल बिता है, और अगर सर ये कार्य नहीं हुआ तो अनंत काल ऐसे ही बीत जाएगा, और हमारा ये आकुलता बनी रहेगी, निराकुलता प्राप्त नहीं होगी, क्योंकि हमने आकुलता निराकुलता को परिभाषा से माना है, वेदन से नहीं। तो वेदन से इस बात को मानना, ये सेवानी जी की जिंदगी की सबसे बड़ी विशेषता है, जो हम लोगों के लिए एक बहुत बड़ा उपकारी बात है कि मुख अरे ज्ञानियों का तो उपकार है ही है, उनकी दशा तो वंदनीय है ही है, उनकी विश्वासता तो वंदनीय है ही है, वो तो हमारे लिए आदर्श है ही है। लेकिन एक मोक्ष दूसरे मोक्ष के लिए आदर्श हो, ये सोगानी जी भी बता सकते हैं कि इन्होंने मोक्ष दशा के लिए क्या किया और क्या हमको करना चाहिए। इसलिए हमारे अनुकरण के लिए, हमारे आदर्श के लिए सोगानी जी की मोक्ष दशा बहुत बड़ी महत्व रखती है। अरे हमारे को तो यहाँ तक पता है कि अब के दिसंबर के महीने के अंदर मेरे बच्चे के मैथ्स में कितने नंबर आए थे और गई साल कितने नंबर आए थे, और उसके पहले वाले साल में कितने नंबर आए थे, यहाँ तक का भान रहता है, सात पीढ़ी का ख्याल रहता है कि इसको क्या जरूरत है, इसकी कितनी जरूरत है, मेरे घर में क्या चाहिए, सारी चीजों के अंदर तो अपने पास जो सोक्षम और पुरुषार्थ दो शक्ति मिली और वो दो शक्ति का उपयोग अपन क्या करते हैं कि 100 रुपए का अगर अपने को एक नोट है, अगर अपने को भूख लगी है तो 100 रुपया अपन को उसी पर्पज में खर्च होते हैं, खर्च करते हैं तो अपनी कार्य सिद्धि होती है। लेकिन हम लोगों का जो 100 रुपए का जो पुरुषार्थ का जो लोट मिला है वो अपन अलग अलग चीजों के अंदर डिवाइड कर देते हैं, इससे एक जगह काम नहीं होता, इससे हमारा काम नहीं हुआ। अनंत काल में अपने हमने अपने पुरुषार्थ की शक्ति को और क्षोभ की शक्ति को, क्षोभ की शक्ति को ज्ञान के अर्जन में लगा दिया और पुरुषार्थ की शक्ति को कुछ करने में लगा दिया कि कुछ करूं इसका नाम पुरुषार्थ है। अरे कुछ करूं ये नाम, इसका नाम पुरुषार्थ नहीं है। आत्मा का पुरुषार्थ तो निरंतर हो ही रहा है, किधर इसका डायरेक्शन क्या है वो देखने की बात है। तो अगर आत्मा भी अभिमुख होकर के पुरुषार्थ हो वो वंदनीय है, वो इच्छनीय है और वही कल्याण का मार्ग है। और जो पुरुषार्थ तर्का अवलंबन लेकर के करते हैं, इसका करूं, उसका करूं, लड़के का करूं, लड़की का करूं, इसके लिए ये करूं, उसके लिए व्यापार की व्यवस्था करूं, उसको मैं पढ़ा लिखा करके तैयार करूं, वो मेरे बुढ़ापे के सहारा बनेगा, वो मेरा आशा बनेगा, इत्यादि इत्यादि कल्पनाओं में अपना पुरुषार्थ ये जीव बर्बाद करता है, ऐसा कहूँ तो अतिशयोक्ति नहीं है। पुरुषार्थ का लोभ तो उसके पास लिमिटेड है, खर्च करता है वो अलग अलग चीजों में, जबकि उसका लोभ तो उसको 8 वर्ष की उम्र हुई इस जीव की, उस दिन इसको मोक्ष प्राप्ति के लिए कर देना चाहिए था। 100 रुपये की पूंजी अगर उसके पास है तो 100 रुपया खर्च उसको सिर्फ एक यत्न में लगा देना चाहिए था। उसकी जगह इसने अपने पुरुषार्थ को डिवाइड कर रखा है, अपने क्षेत्र को डिवाइड कर रखा है, क्षेत्र का इसने उपयोग किया कि मेरा आक्षेप निज में है, यही मुझे नक्की करना है, यही मेरे वेदन से मुझे नक्की करना है, मैं ये लाइन पकड़ा और मैं पुरुषार्थ का इसने उपयोग किया। तो भला बताइए कैसे काम हो सकता है। तो सबको साजिब होता है कि सोगानी की क्या कहे, जो गुरुदेव की एक बात सुनी, अरे एक शब्द सुना, मैं तो कहता हूँ आधी लाइन थी, राग और ज्ञान जुदा है, तो आधी लाइन थी, पूरा प्रवचन 1 घंटे का प्रवचन नहीं हो, एक प्रवचन की एक लाइन का भी आधी लाइन, उस लाइन को सुनने वाले तो बहुत हैं, सभा में तो बहुत से लोग थे, पहले भी गुरुदेव अनेक बार बोले हैं कर्ता कर्म अधिकार में, तो ये सारा वर्णन ही आता है पर के कर्तव्यों का, रात के अनुभव में क्या होता है, आकुलता होती है, दुख रूप है, अपवित्र है, मलिन है, इत्यादि इत्यादि कितने कितने बातें शास्त्र में आती है। तो गुरुदेव ने तो अनेक बार स्पष्टता की है और उसके बाद भी वो बोलते रहे हैं, तो फिर सोगानी जी और हमने क्या अंतर रहा, हमने भी सुना उसी सभा में और सोगानी जी ने भी उसी सभा में सुना, तो हमने क्या क्षति रही और सोगानी जी में क्या क्षति नहीं थी, अगर वो विचार करें तो उनकी मूर्खता को प्रणाम किए बगैर नहीं रह सकते। और प्रणाम करने का मतलब ये है उसको अंगीकार करना, अपने में अंगीकार करके यह सोगानी जी आपकी मूर्खता हमको प्राप्त, क्यों कि श्रीमद जी ये कहते हैं कि अनंत काल में कोई अगर इस जीव का दोष रहा है तो एक रहा है, वो है मूर्खता उत्पन्न होना। तो हे परमात्मा, ज्ञानी धर्मात्मा ये ऐसा कहते हैं कि मूर्खता उत्पन्न नहीं होना ये सबसे बड़ा दोष है। उन्होंने ये नहीं कहा कि पूजा नहीं की, सत्संग नहीं किया, प्रणाना नहीं किया, त्याग नहीं किया, व्रत उपवास नहीं किए, वो नहीं किया, ये नहीं किया, वो दोष है। श्रीमद जी ने स्पष्ट कहा कि इस जीव का अनंत काल में कोई अगर दोष रहा है तो मूर्खता की उत्पन्न उत्पत्ति नहीं हुई, वो सबसे बड़ा दोष है। तो सोगानी जी ने हम लोगों को ये दिशा निर्देश दिया कि किस प्रकार से मूर्खता उत्पन्न हो सकती है, वर्धमान होती है और कैसे वो उसका विकास होकर के मूर्खता अपने उस स्टेज पर पहुंचती है कि सामने बात आते ही उसको पकड़ लेता है। तो जैसे सत आवश्यक नहीं, एक आवश्यक है, आत्मधर्म मिला, एक लाइन पढ़ी, सत आवश्यक नहीं, एक आवश्यक, तो सत आवश्यक में तो उनको कर्तव्य का बोझा लगता ही था, पूजा करने में उनको कहाँ शांति मिल रही थी, शास्त्र पढ़ने के लिए अजमेर के अजमेर में रह करके महीनों तो घर पर नहीं गए, किसी ने आता था उनका पंडित जी को रख लिया, किसी ने कहा कि शास्त्र से शांति मिलती है तो शास्त्र में लग गए, किसी ने कहा पूजा में शांति मिलती है तो पूजा में लगे, किसी ने कहा कि ध्यान में शांति मिलती है तो अजमेर के पास में एक वैष्णव तीर्थ है पुष्कर, वो वहाँ चले जाते थे एकांत में, और वहाँ नेसर की गुफाएं हैं उस पार की कंदराओं में, वहां जाकर के ध्यान में बैठ जाते थे। घर वालों को पता ही नहीं रहता है कि वो कहाँ गए, कहाँ पर होंगे सोगानी जी, कोई पता नहीं रहता। क्यों? कि वो तो अपनी धुन में थे कि वो आकुलता कैसे मिटे, आकुलता कैसे मिटे, और वो आकुलता उनको सहन नहीं होती थी, तो चाहे वो ध्यान में बैठे हैं तो भी उनको वही प्रॉब्लम बनी रहती थी कि आकुलता, पूजा करते तो भी आकुलता, शास्त्र बांटते तो भी आकुलता। अरे पंडित जी को रख लिया और महीनों तक घर नहीं गए, टिफिन आता था घर से पंडित जी का और उनका अपना, लेकिन किसको खाना, कभी कभी तो पढ़ा जाता था और उसको ध्यान ही नहीं जाता था, वो तो एक ही खोज में थे बस। ये आकुलता चयन नहीं होती है और निराकुलता प्राप्त नहीं होती है तो अब करो क्या। तो उन्होंने एक जगह लिखा है कि या तो देह छूट जाएगी या विकल छूट जाएगा, तीसरी स्थिति बनने वाली नहीं थी। ये मूर्खता का प्रमाण है कि हर जीव को ये अगर ध्येय रखे कि मुझे अपनी जिंदगी के अंदर मुझे जो कुछ पुरुषार्थ प्राप्त है, पुरुषार्थ का बल प्राप्त है, उसका उपयोग मैं सिर्फ एक आत्म शांति की खोज में लगाऊंगा, अन्यत्र नहीं, तो उसका कार्य हो सकता है। क्यों? कि आत्मा खुद है, खुद का सुख है, वो खुद के पास है, ये सुख किसी उदयाधीन नहीं है, पंचेंद्रिय के विषय उदयाधीन है, श्रोत्रम उदयाधीन है, ज्ञानी का मिलना उदयाधीन है, शास्त्र का मिलना उदयाधीन है, गुरुदेव का मिलना उदयाधीन है, लेकिन आत्मा और आत्मा का सुख वो प्राप्त होना ये कोई उदयाधीन नहीं, ये वर्तमान पुरुषार्थ अधीन है। और जो अपने पास पुरुषार्थ की शक्ति है उसको अगर एक जगह केंद्रित कर दें, यानी कि जैसे मैंने पहले उदाहरण दिया कि 100 रुपए का नोट मेरे पास है और उसका मैं एक ही दिन अगर उपयोग करूँ तो एक चीज खरीद सकता हूँ, और 100 रुपए को मैं अगर 2-2 रुपए के रूप में बांटूंगा तो कुछ भी चीज नहीं मिलेगी, कोई भी काम उसका सिद्धि नहीं होगी। तो मेरे पास अगर 100 रुपए का पुरस्कार प्रति नोट मिला है तो उसको मैं एक दिन केंद्रित करके सारी शक्ति अगर मैं इसमें लगा दूँ कि मैं कौन हूँ, और जब तक मुझे इसका सत्य का उत्तर नहीं मिलता तब तक मैं दूसरा कुछ नहीं करूंगा, दूसरा काम नहीं करूंगा। ये सबसे बड़ी विशेषता सोगानी जी की है। और मैं तो ये कहता हूँ कि आप ये देखिए कि आत्मधर्म मिला और उन्होंने पढ़ा कि सत आवश्यक नहीं, एक आवश्यक है, क्या आवश्यक, स्वानुभूति। क्यों? कि स्वानुभूति से ही संसार का दुख मिट सकता है, दूसरा कोई उपाय नहीं है। स्वानुभूति के अलावा इस दुनिया में कोई सुख का उपाय नहीं है। कितने भी सुधार कीजिए, कितने भी मुनि व्रत धारण कीजिए, कितना ही सत्संग कीजिए, कितना ही शास्त्र स्वाध्याय कीजिए, खुद पढ़िए, दूसरे को पढ़ाइए, लेकिन इसमें कुछ भी मिलने वाला नहीं है। ये सोगानी जी का संदेश है। सोगानी जी की जिंदगी से यही सीखने का होता है कि जिस वक्त में उनको ये मिला कि स्वानुभूति एक ही आवश्यक है, तो उन्होंने उसी समय दृढ़ निर्णय कर लिया कि मेरी समस्या का हल यहाँ इस पुरुष से हो सकता है। वो उन दिनों में 1946 की बात है, अजमेर का उनका घर एक ऐसे बॉर्डर का है कि जहाँ रोज 17 साल से पहले की जो हिंसाएं थी, हिंदू मुस्लिम कम्युनल राइट्स हो रहे थे, उसके अंदर उनका घर नजदीक था। उनके घर के सामने कोई दिन ऐसा नहीं था कि जिसमें मर्डर नहीं होते हो, खून नहीं बहता हो। ऐसी स्थिति के अंदर उन्होंने न घर वालों को कहा, मैं दुकान को कहा, मैं कोई खाने का सामान लिया, मैं कोई वस्त्र लिए, क्योंकि लेते तो किसी को पता लग जाता और लग जाता पता तो कौन जाने देता, कौन उनको फोन कराने देता ऐसी स्थिति में कि जो घर के सामने फोन हो रहे हैं। लेकिन सोगानी जी ने किसी को नहीं कहा और चुपचाप उस सत्य की खोज के लिए, इस सत्य का मार्ग मुझे यहाँ इस पुरुष के पास से मिल सकता है कि जिसने मुझे अनंत काल से कर्तृत्व के नीचे मेरी दबी हुई आत्मा को एक मुक्तता कर दिया कि नहीं ये की आवश्यक है और कोई आवश्यक नहीं है। और ये तो आत्मानुभूति, यानी मैं आत्मा और इसकी अनुभूति है, इसके बीच में कौन है, इसके बीच में तो कोई ना उदय भाव है, न कोई परद्रव्य है, न कोई प्रभाव है, न और कुछ है, इसमें तो खुद है और खुद का परिणाम है, दो ही चीज है। तो फिर इसको इसको रोकने वाला कौन है? तो वो यहाँ से बिना किसी को कहे गाड़ी में बैठ गए, सोमगर आ गए और उन्होंने गुरुदेव का प्रवचन सुना, राग और ज्ञान जुड़ा है और उन्होंने इस शब्द को उसी समय चलते प्रवचन में अपने अंदर से प्रमाण किया, क्योंकि राग का अनुभव तो उनको था। विकल्प में कसा भक्ति जैसा दुख लगता था, राग कहो कि कसाय कहो एक ही बात है, तो उस कसाय की भक्ति के अंदर तो जलते ही थे, पूजा से थक गए, चिंतन से थक गए, मनन से थक गए, शास्त्र पढ़ने से थक गए, सब जगह से उनको कहीं पर भी सुख शांति मिली नहीं। तो इसलिए वो समस्या का अंत खोजने के लिए यहाँ आए कि ये समस्या का निराकरण मेरा यहाँ होगा। तो वो यहाँ आए और उन्होंने अपने अनुभव से प्रमाण किया कि ये गुरुदेव जो कहते हैं कि राग में आकुल का है, ये तो मैं बता रहे हैं, मुझे आकुल का हो रही है, हर गाँव में मुझे आकुल का है। अरे खाना पीना तो ये तो बहुत दूर की बातें हैं, यहाँ तो ये कहना है कि जैन मार्ग में अशुभ की तो कथा ही नहीं है। जो लोग जैन मार्ग के अंदर अशुभ का कथा छोड़ने की बात करते हैं, तो मैं इस प्रकरण के अंदर आपको एक बताना चाहता हूँ कि एक फ्रांस की दंपति थी, वो इंडिया के अंदर सर्व धर्म के ऊपर में विजिट करने आई थी, वो PhD करके कर चुकी थी पहले यहीं इंडिया में, लेकिन वो आए थे विजिट करने के लिए। तो जब उन्होंने एक पंडित जी से पूछा, जैन के बहुत बड़े विद्वान थे उस जमाने में, शायद उनका नाम सब लोग जानते हैं, वो कुलसिंह सिद्धांत शास्त्री थे, जिन्होंने अनेक प्राचीन शास्त्रों को आज हमको सुलभ कराया है पढ़ने के लिए, तो वो जैन समाज पर उस व्यक्ति का उपकार है। तो उसने पूछा कि देखिए बौद्ध धर्म के अंदर भी 5 पापों का निषेध है, 10 कमांडमेंट जो कृष्ण वगैरह में आते हैं, उसके अंदर भी कहीं पर भी हिंसा करना ऐसा कहीं नहीं आता है, झूठ बोलना, चोरी करना, कुशील सेवन करना, परिग्रह सेवन करना, ऐसा किसी धर्म में नहीं आता है। जितने भी आस्तिक मत हैं इसके अंदर ये 5 पाप का तो निषेध है, तो फिर आपके पास में अगर 5 पापों का निषेध, इसको आप धर्म कहते हो, अहिंसा परमो धर्म कहते हो, तो फिर आप अपनी बात को कहने के लिए दूसरे बौद्ध वगैरह के अंदर क्यों नहीं मर्ज हो जाते? हाँ मैं जानता हूँ कि आपके यहाँ पर इसका सूक्ष्म विवेचन है, अनुव्रत महाव्रत के नाम से आपके यहाँ बहुत सूक्ष्म विवेचन है, क्योंकि ऐसा विवेचन अन्यत्र नहीं है, तो आपको प्लेटफॉर्म तो मिलेगा असली बात कहने का। तो उन्होंने कहा जैन धर्म तो अहिंसा परम धर्म मानता नहीं, तो वो दंग रह गए, अहिंसा में परम धर्म, अहिंसा परमो धर्म आप कहते हो धर्म नहीं। तो बोले ये तो जैन का शिष्टाचार है, 5 पाप नहीं करना, यानी हिंसा झूठ चोरी कुशील परिग्रह ये नहीं करना, ये तो जैन मात्र का शिष्टाचार है। तो भाई साहब ये बताइए कि जिस जैन धर्म का, जिस जैन धर्म दर्शन का शिष्टाचार इतना सुंदर है, इसको लोग धर्म कहते हैं, परम धर्म कहते हैं, पुकारते हैं अहिंसा परमो धर्म कहते हैं, और उसके लिए पंच महाव्रत, 28 मूल गुण, अनुव्रत आदि कई कई प्रकार के जो है वो हम लोग करते हैं, लेकिन जिसको सामान्य शिष्टाचार कह दिया गया, ये तो जैन मात्र का शिष्टाचार है, ये कोई धर्म नहीं है। तो यहाँ पर यही बात है कि सुगानी जी को किसी बाह्य हिंसा वगैरह चोरी वगैरह के पापों की बात पर थी नहीं, यहाँ तो ये थी कि आत्मा संबंधी जो विचार है उस विचार के अंदर भी आकुलता है, तो ये आकुलता कैसे मिटे? तो गुरुदेव ने कहा राग में आकुलता है, तो उन्होंने मन में सोचा कि ये तो मेरे ही भावों का वर्णन कर रहे हैं, मेरी जो दशा है, मेरा जो वेदन है, वो गुरुदेव बता रहे हैं कि यार राग में आकुलता है। अब समस्या हो गई कि राग में आकुलता, ये तो मेरा वेदन है और ये गुरुदेव बता रहे हैं, ये बात तो बराबर है, तो अब वो तो प्रमाण किया हुआ ही साफ है, वो तो इतनी भूमिका तो सोहानी जी लेकर के फोन कराए कि विकल्प मात्र में कसाय की भक्ति जैसा दुख लगता था, तो ये तो वहां से लेके आए, लेकिन वो शब्द का पता नहीं था कि इसको क्या बोला बोला जाए। तो गुरुदेव ने शास्त्रीय भाषा में कहा कि राग आकुलता है, दुख का कारण है, मलिन है, स्वभाव विरुद्ध है। तो उन्होंने प्रमाण कर लिया कि तो मेरा अनुभव, अब राग ज्ञान का ज्ञान जुदा है तो बराबर है, अगर ज्ञान और राग अगर एक हो जाते तो राग को जानता कौन? तो इसका मतलब है कि जो भिन्न रहने वाला वो ज्ञान है, शास्त्रीय भाषा उनको पता नहीं थी, लेकिन उन्होंने देखा कि जो जानता है, जिसको मैं खोज रहा हूँ कि वो कौन, वो कौन, वो कौन, तो ये जो गुरुदेव वो कौन को जो कह रहे हैं, वो ज्ञान को कह रहे हैं, यानी आत्मा को बता रहे हैं। तो उन्होंने उसी समय उस ज्ञान वेदन को पकड़ने की कोशिश की कि जो निराकुल था, गुरुदेव ने उसकी परिभाषा दी कि ज्ञान निराकुल है, स्वाभूत है, पवित्र है। तो उन्होंने उसी समय उसी चलते प्रवचन में धन्य उस जीव को और धन्य उस गुरु को किस बेला में किस शुभ घड़ी के अंदर ये सब निकले होंगे, स्मरण करते ही रोमांच खड़ा हो जाता है। कैसी घड़ी होगी और कैसी वो अब कैसे सब निकले होंगे और कैसा सामने पात्र जीव होगा कि जो कितनी तैयारी के साथ फोन लगाया था कि जिसने अनंत समोत्सव में गया, अनंत तीर्थंकरों के समोत्सव में गया, लेकिन ये गरज लेके कभी नहीं गया कि मैं कौन हूँ और मेरा सुख कैसे मिले। और वो इसी खोज के अंदर आए थे और गुरुदेव के इस वाक्य ने उनको दिशा बोध दिया और उसी समय उन्होंने अपने ज्ञान वेदन से ज्ञान को पृथक राग से कर लिया। यही संसार से मुक्ति है, राग से पृथक ज्ञान होना। पृथक तो है ही, ज्ञान और राग कभी एक हो गया और तो वही नहीं है। पर द्रव्य के साथ एक तत्व जीव कर ही नहीं सकता, मान्यता करता है, क्योंकि परद्रव्य तो परद्रव्य उसके साथ एकत्व कैसे कर सकता है, एकत्व तो अपने राग के साथ होता है। तो परद्रव्य स्त्री पुत्र परिवार, एक परिवार परद्रव्य में रहे, संसार में रहे, इनसे कैसे एकत्व हो सकता है। ये तो भ्रांति है, ये जीव की मान भ्रांति है कि परद्रव्य के साथ एकत्व, अरे शरीर के साथ एकत्व कैसे हो सकता है, ये तो जड़ है, मुर्दा है, इसके साथ एकत्व कैसे हो सकता है। लेकिन इस शरीर के प्रति जो ममत्व है, शरीर के प्रति जो राग है, उसके साथ ये जीव एकत्व करता है, लेकिन वो एकत्व वास्तव में हो नहीं सकता। क्यों? वो आकुलता वाला है और एकत्व अगर हो तो सिर्फ ज्ञान के साथ हो सकता है, राग के साथ नहीं। ये दिशा बोध उनको मिला, इस दिशा बोध के परिप्रेक्ष्य में परिवेश में उन्होंने ये बात को समझा, अनुभव किया, देखा और रात भर उसको वलन में रहे और सुबह उठते उठते उसी रात जिस दिन गुरुदेव का प्रवचन सुना, जिस दिन वो अजमेर से सोंदर पहुंचे, देखिए अनंत भाव का उसी रोज निवेड़ा हो गया।
स्वानुभूति देखिए उठे। एक मिनट में आप समाप्त करिए क्योंकि हमारे दूसरे स्पीकर आने वाले हैं ना। तो
हाँ बोलिए, आप बोलिए।
हाँ आप एक मिनट में समाप्त कीजिए क्योंकि हमारे अभी नेक्स्ट स्पीकर भी नहीं आने वाले हैं। तो
आप बोलिए।
हाँ, आप एक मिनट में समाप्त कीजिए।
हाँ वो ठीक है, मैं यही कहने जा रहा था कि सुगानी जी की ज्ञान दशा तो हम लोगों के लिए अनुकरणीय नहीं है, क्योंकि ज्ञान दशा तो सारे ज्ञानियों की एक ही होती है, क्योंकि सबका आत्मा एक है और सबका आत्मा एक है तो उसका अनुभव भी एक ही है। कार्तव्य में समय फर्क हो सकता है, वो पुरुषार्थ और चारित्र के अपेक्षा से है, लेकिन श्रद्धा में कोई फर्क नहीं है। सारे ज्ञानी हमारे लिए वर्णनीय है, पूजनीय है, चाहे वो सोगानी जी हों, चाहे वो श्रीमद राजचंद जी हों, चाहे महावीर स्वामी हो, चाहे कुंडाचार्य हो, चाहे गुरुदेव हो, चाहे कोई भी हो, जो ज्ञानी है, जो वीरता जी है, वो हमारे लिए सब वर्णनीय है। लेकिन हमारे लिए अनुकरणीय जो है हमारी वर्तमान दशा में, वो सोगानी जी की मोक्ष दिशा हमारे
बराबर
नहीं है। और इतना कहकर के मैं विराम देता हूँ, सभी को मेरा जय जिनेंद्र।
जय जिनेंद्र, थैंक यू, आपका बहुत ही प्रेरणादायक आपका वो प्रवचन था और हम सब भी मोक्ष का उत्पन्न करें वो ही हमारे।
सानू बहन राकेश जी आ गए।
मैं बताता हूँ, मेरे यहाँ से आत्म जागृति पत्रिका निकलती है गुजराती में और हिंदी में निकलती है आत्मता की, दोनों में एक ही चीज है जिसके अंदर चार मास धर्मात्मों के इसमें वचन प्रकाशित होते हैं। एक बहन श्री पूज्य जो सौंदर में थे गुरुदेव कृपालु देव श्रीमद राजचंद जी पंडिया जी सोगानी जी, इन चार महापुरुषों के वचन लिए हुए हर महीने पत्रिका यहाँ से डिस्पैच होती है सभी को पूरे हिंदुस्तान में और बाहर में। ये मेरा परिचय है, मैं उसका संपादक हूँ और वो हमारे जो ट्रस्ट रहा था उसको मेरे ट्रस्ट भी है, ये मेरा परिचय है।
थैंक यू आपका बहुत ही प्रेरणादायक था और हम भी सब सुगानी जी का एग्जांपल लेकर हमारे मोक्ष का उत्पन्न करे वो ही भावना है। हाँ राकेश जी, हेलो राकेश जी,
हाँ जी,
हाँ राकेश जी, जय जिनेन्द्र,
हेलो,
हाँ, राकेश जी, जय जिनेन्द्र, हाँ राकेश जी, आज हम सुगाने के बारे में ही आज लेंगे, क्योंकि हमारा प्रोग्राम का थोड़ा चेंज हुआ था, तो आप शुरू कीजिए।
हाँ निहाल भाई के बारे में बात करना है ना।
हाँ,
जी हाँ, जी हाँ, आवाज आ रही है आप लोगों के साफ साफ?
हाँ, अच्छी आ रही है। हाँ जी जी, अच्छी आ रही है।
ठीक है,
हाँ
जी हाँ, जी हाँ,
आप शुरू कीजिए।
आज हम लोग, जी हाँ जी हाँ, आज हम लोग आदरणीय श्री निहाल भाई चौधरी, उनका जो हम जन्म शताब्दी वर्ष मना रहे हैं, इसके उपलक्ष्य में हम आज कुछ चर्चा यहाँ पर करेंगे। मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि हम आधा घंटा, कुल 40 मिनट का समय हमारे पास में है, आधा घंटा हम कुछ चर्चा करेंगे और 10 मिनट इसके बाद में आखिरी में चर्चा के लिए हम बच सकते हैं।
हाँ, बहुत अच्छा।
जो निहाल भाई जी,
हाँ बहुत बहुत ही अच्छा,
जो निहाल भाई जी, निहाल भाई जो हुए हैं सुगानी जी, इनका जो जीवन, मैं थोड़ा सा संक्षेप में आपको परिचय देना चाहता हूँ। आपका जन्म सन 1912 में हुआ था, विक्रम संवत 1969 में, और बैसाख शुद्ध 11 को आपका जन्म हुआ था। और कुल मिला करके इनकी जो आयु थी वो 52 वर्ष की कुल आयु रही है आपकी, मैंने बहुत लंबा उनकी आयु नहीं रही है, लेकिन उनको जो गुरुदेव श्री का समागम है वो जल्दी मिल गया था, लगभग 34 वर्ष की उम्र में ही उनको गुरुदेव श्री का समागम हो गया था। और 1936 में, 1940 में आपको गुरुदेव का समागम भी हुआ, और उसके पहले एक घटना और घटी थी, उनको आत्मधर्म मिला था, तो वो भी 1940 में ये सारी घटना हुई है। और उनके जो सन्नत की प्राप्ति की भी यदि हम बात करें, तो सन्नत की प्राप्ति का भी जो समय है वो 1940 का ही समय है, तो उसके बाद उन्होंने 18 वर्ष तक उनका जीवन रहा है। तो हम ये कह सकते हैं कि इस भाव में उनके सन्नत का जीवन 18 वर्ष का रहा, उनके गुरु समागम का जीवन वो भी 18 वर्ष का रहा, गुरु का समागम उनके प्रत्यक्ष परोक्ष मिलता रहा, उनके जीवन में बहुत उतार चढ़ाव भी आए, उसके कारण से उनके जीवन में उनको ऐसा बहुत अंदर में तड़क रही बात आखिरी तक कि मैं गुरुदेव के समागम में 2-4 बरस लगातार रहना चाहता था, लेकिन जो जीवन की परिस्थितियां रहीं उन परिस्थितियों के कारण वो गुरुदेव के समागम में लगातार नहीं रह पाए। वैसे गुरुदेव के समागम में उनका जो मेरी जानकारी है, लगभग 10 बार वो गुरुदेव के समागम में गए हैं, 8 बार तो उनका सोनगढ़ में ही गुरुदेव का समागम हुआ है उनको, और उसके बाद में एक बार उनको आखिरी समय में, सन 1964 में उनका देहावसान का समय है, तो उस समय गुरुदेव के मानो अंतिम दर्शन करने के लिए वो दादर में गुरुदेव की जन्म जयंती का प्रसंग था, वो वहाँ गए थे। इसके पहले एक बार गुरुदेव का समागम जब वो कलकत्ता का उनका प्रवास चल रहा था, उस समय गुरुदेव यात्रा करते हुए वहाँ गए थे 1956 में, तो वो उस समय भी गुरुदेव से उनकी मुलाकात हुई है। ऐसे गुरुदेव से उनकी बीच बीच में, तो उनका जो गुरुदेव से समागम का समय है उसमें बहुत गैप भी आया है। मैंने सबसे पहले उन्होंने 1940 में गुरुदेव से मिलने गए थे जब उनको सम्मत की प्राप्ति हुई, उसके बाद में फिर 2 वर्ष के बाद में 1948 में गए, फिर 4 वर्ष के बाद में 1952 में गए, फिर 7 वर्ष के बाद में 1959 में गए, लेकिन उसके बाद में फिर लगातार गए 1959 में, 60 में, 61 में, 62 में, 63 में, 64 में भी उनका गुरुदेव श्री से, मैंने धीरे 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 उनकी जैसे जैसे परिपक्वता बढ़ती गई जैसे जैसे उनका गुरुदेव का समागम भी बढ़ता गया, इसमें मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि जो उनका व्यक्तिगत जीवन था गुरुदेव के समागम में, तो वो 35 वर्ष की उम्र में आए, उसके पहले का भी उनका यदि हम जीवन देखें तो बहुत सात्विक परिणति का उनका जीवन था, बहुत वैराग्य में भी उनका जीवन था, और कुछ जन्म से ही कुछ ऐसे दर्शन वो लेके आए थे, मानो वो इंतजार ही कर रहे हो कि मेरे को तो इस भाव में कोई ना कोई कोई विशेष काम करके जाना है। इसके लिए उन्होंने बहुत शास्त्रों का अध्ययन किया, अपने जैन ग्रंथों का भी अध्ययन किया, अन्य ग्रंथों का भी अध्ययन किया उन्होंने, कुछ वैचारिक द्वंद उनसे बहुत चलता रहा, तो संतुष्टि नहीं हो रही थी ना, बर्फ बर्फ थी, तो इस कारण से उनसे संतुष्टि नहीं हो रही थी, तो इस कारण वो बहुत मतलब उनका समय से लगाया, बहुत प्रयोग किए उन्होंने, जैसे कि 5-5 घंटे तक पूजा करना, उनको ऐसा लगता है जैसे पूजा करने में धर्म हो जाएगा, कुछ मेरे को शांति मिल जाएगी, ऐसे वो ध्यान के लिए बहुत लंबे लंबे समय तक बैठे, हठवाद जैसे योगियों का हठवाद प्रसिद्ध है, ऐसा उन्होंने हठवाद का भी उन्होंने जीवन दिया, बहुत एकांतवास किया, रात रात भर जागना, रात रात भर इस पर विचार करना, जब सारी दुनिया सो रही है, जैसे हम जो पूजा में कहते हैं ना, वो अर्ध निशाता सन्नाटा वन में वनचारी करते हैं, और शांत निराकुल मानस तुम तत्वों का चिंतन करते हो, ये पंक्तियाँ उन पर बहुत घटित होती हैं, मानी सन्नत के पहले भी उनका जो जीवन था, ऐसा हम कह सकते हैं कि जो सन्नत की उन्होंने प्राप्ति की, तो सन्नत की प्राप्ति की जो 5 लब्धियाँ होती हैं, 5 लब्धियाँ, चेतन लब्धि, सिद्धि लब्धि, वेषणा लब्धि, प्रायिक लब्धि, करण लब्धि, इसके बड़े उनके जीवन में हम इन 5 लब्धियों को क्रम से देख सकते हैं, मैंने जो वैचारिक उनमें स्वाध्याय आदि की प्रक्रिया चलाते थे, वो पढ़ते थे लिखते थे, ये उनका एक चेतन लब्धि की एक प्रक्रिया थी, जो अंदर में उनको बहुत प्रसन्न होती थी और अंदर में उनको भावना बहुत उसकी विशुद्धता परिणामों में थी, तो विशुद्धता उनकी विशुद्धि लब्धि, फिर बाद में गुरुदेव का समागम हुआ, गुरुदेव के समागम के पहले उनको आत्मधर्म मिला, आत्मधर्म मिला तो आत्मधर्म का एक वाक्य उनके ऊपर इतना प्रभाव डाला, जीवन में 2 वाक्य उनमें विशेष रूप से प्रभावशाली रहे, एक आत्मधर्म का वाक्य वो भी गुरुदेव का ही है, 6 आवश्यक नहीं होते हैं, 1 ही आवश्यक होता है, ये वाक्य ने उनके पूरे जीवन की दिशा बदल दी, और उसके बाद तो वो इतने प्रमोद में आ गए, इतने प्रमोद में आ गए कि वो प्रमोद को व्यक्त करने में मानो उनसे रहा नहीं जा रहा था, गुरुदेव को जब मिलेंगे तब मिलेंगे, तो वो आत्मधर्म में ही गुरुदेव का एक फोटो छपा हुआ था, उन्होंने गुरुदेव के फोटो को सामने रखा, और उसके बाद में उधर चंदन तंदुल कुछ भी कहीं ऐसा बोल करके उन्होंने गुरुदेव के फोटो को भी अर्घ्य चढ़ाया, यद्यपि हमारे यहाँ का जो दिगंबर सिद्धांत है, मान्यता है, धर्म की जो पद्धति है, इसमें फोटो से पूज्य नहीं होता है, लेकिन अब उस समय का जो भावना का उनका आवेग था, उस भावना के आवेग को मैं नमस्कार करता हूँ, और उनके उस भावना के आवेग का सम्मान करते हुए बताना चाहता हूँ कि उन्होंने वो फोटो को अर्घ्य चढ़ाया, और फोटो को आगे चढ़ाने के बाद में इतनी गदगद हो गई कि देखो क्या बात है, क्या आवश्यक नहीं होती, आवश्यक तो उनसे ही है, और वो आवश्यक क्या है, तो अपनी आत्मा को अपनी आत्मा में लीन करना, किसी का नाम देव पूजा है, किसी का नाम गुरु की उपासना है, किसी का नाम स्वाध्याय है, इतनी सब घट जाएगा, किसी का नाम तप है, दान है, सब तो कुछ आपको सुनाई पड़ रहा है, ठीक है। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ऐसा तो उनका वो जीवन रहा, और उनके जीवन में फिर देखना लब्धि हुई, फिर साक्षात गुरु के दर्शन हुए, दर्शन के साथ में वो तो हिंदी प्रांत के व्यक्ति थे, सोगानी जी ये मतलब मुझे ऐसा लगता है कि ये खंडेलवाल समाज के थे, और सोगानी जी यहाँ अजमेर में उनका जन्म था और वहाँ कलकत्ता में वो रहे, तो उनको गुजराती से उनका कुछ लेना देना नहीं था, लेकिन जब वो सबसे पहले जब उन्होंने आत्मधर्म पढ़ करके वो सोनगढ़ पहुँचे, तो सोनगढ़ पहुँचे हैं तो उन्होंने जो पहला वाक्य गुरुदेव का सुना है, और जब वो वाक्य में ही वो अंतर उतर गए, मैंने ऐसा नहीं हुआ कि जैसे उन्होंने पूरा व्याख्यान सुना हो, पूरा समझा हो और उनको उसका अभ्यास किया हो बहुत दिन तक के, पहले दिन का वाक्य उन्होंने सुना है। और वो जो गर्भवती की धर्म सभा थी, एक अपने बात में ये जो गर्भवती प्रकाश के ग्रंथ है ना, अभी यहाँ पे छपा है अपने भावनगर से छपा हुआ है, तो गर्भवती प्रकाश ने अपने आदरणीय शिशि भाई जी ने एक उनके जीवन परिचय की बहुत अच्छी कहानी जैसी मतलब पूरा परिचय दिया है उनके बच्चों से पूछ करके और साधर्मियों से पूछ करके, तब उन्होंने बहुत स्टडी करके करीब 40 पेज में उन्होंने उनका परिचय दिया है और बहुत प्यारा परिचय है। आपको यदि वो पुस्तक मिलती है तो आप इसको पढ़ना। मैं आपको ये बता रहा हूँ, इसमें गुरुदेव के जो ये बताना चाहता हूँ मैं आपको कि गुरुदेव इन्होंने जब इसमें देखा और सुना, उनको गुरुदेव का प्रवचन सुनने लगे तो गुजराती नहीं आते हुए भी उनको इतना सा समझ में आया राज अने ज्ञान इनसे, और इतना सुना उन्होंने उनकी धर्म सभा से ही अपनी एक प्रयोगशाला बना ली। मैंने उन्होंने अपने जीवन में सत्य ज्ञान को ज्ञान में स्थापित नहीं करते हुए, दिमाग में स्थापित नहीं करते हुए, उन्होंने अपने दिल में उतार लिया उसको और वहीं पर वो प्रयोग करने लगे। और प्रयोग करते 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 वो कैसे उसमें उन्होंने उसका घोलन किया और वो अंदर उतर गए, उसका एक बहुत सुंदर उन्होंने वर्णन किया है अपने सती भाई जी ने, वो मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। उन्होंने ऐसा दिखा कि वे देखिए ऐसा लिखते हैं वो, चौगानी जी के लिए तो पूज्य गुरुदेव श्री की धर्म सभा ही मानव प्रयोगशाला में रूपांतरित हो गई और उन्होंने वहीं अपना प्रयोग प्रारंभ कर दिया। उन्होंने ज्ञान अने राज विदा के इस वाक्य के वाक्य की डोर संभाली और उसके सहारे वे वाक्य के अंतर तल में उतरे और गहरे उतरते चले गए। उन्होंने वहां वर्तते राग तत्व का सूक्ष्म परीक्षण किया और उन्हें वह विभावांश नलिन स्वभाव विरुद्ध दुखरूप और आतुरता में भाव भाषित हुआ और वहीं सात वर्ष से ज्ञान तत्व के अन्वेषण पर उन्हें वह स्वभावांश चक्ष स्वभावभूत सुखरूप और निराकुलता में भाषित हुआ। ऐसे उन्होंने उसके दोनों भावों को यथार्थ रूप से पहचाना और वेदन पूर्वक उन दोनों की मूल जाति को समीचीन रूप से सुनिश्चित किया। फिर अनुभूति की कैसी प्रक्रिया बन रही है, फिर ये प्रगत ज्ञानांत में वर्तते नित्य उदित सामान्य ज्ञान करके ज्ञान स्वभाव में सन्निहित अनंत अनंत गुण समुद्र की ओर बढ़े तो वहां उन्हें आश्चर्यकारी अनंत विभूतियों से विभूषित चैतन्य मणि रत्नों से झलकते अपने स्वभाव की झलक भाती थी। इस प्रकार से अपने ही ऐसे सत्य स्वरूप के निश्चय से उन्हें शुद्ध स्वभावी अनंत सिद्ध भारत नहीं ऐसा महान पदार्थ ऐसा यथार्थ भाव हासिल हुआ। ऐसे उनको जो सन्मति की प्राप्ति हुई, ऐसे वो उतर गई और वो अकेले उस सभा में ही ये उनकी प्रक्रिया नहीं चली। वो दिन तो ऐसा गया है उनका मानो पूरा दिन किसी की दिन चलती रही पूरा दिन, और रात्रि में ऐसा कहते हैं कि वहाँ पर जो भोजनालय है अपना सोनगढ़ में समिति है उसका एक 10 नंबर का कमरा है शायद, वो कमरे में वो अपने बंद करके बैठ गए और रात भर पता नहीं कब तक वो बैठे रहे और यही उनका जो प्रयोग है वो प्रयोग उनका चलता रहा। और मानो ऐसा कहा जाता है कि वो तो सम्मत को लेकर के उठे, यानी कितनी जो महापुरुषार्थ वाली स्थिति है वो उन्होंने उसको निभाई। ऐसा कहते हैं कि वो जब ध्यान वगैरह के लिए बैठते थे तो जैसे कुछ रेस्ट लेना हो ना तो वो ध्यान मुद्रा में ही ऐसे लेट भी जाते थे और उनकी जो ये अपने पाँव की जो स्थिति थी वो बिगड़ती नहीं थी, पाँव को फैलाते नहीं थे, उनको बांध के रखते थे पद्मासन में और ऐसे ही लेट भी जाते थे। मैंने ये कुछ उनके जीवन की कुछ बातें जो हैं वो अत्यंत प्रेरणादायक हैं। गुरुदेव श्री उनसे यदि किसी चीज से प्रभावित हुए हैं उनके द्रव्य दृष्टि की विषय का तो प्रभाव है ही है, वो उनको बड़ा पुरुषार्थ मूर्ति मानते थे गुरुदेव। गुरुदेव भी उनको ऐसा कहते थे कि ये तो कोई महापुरुषार्थी जीव है। और गुरुदेव श्री ने भी अनेक प्रसंगों में गुरुदेव श्री को उन्होंने भगवान जैसा भगवान जैसी स्थिति की है गुरुदेव श्री की, और गुरुदेव श्री ने भी उनकी अनेक प्रसंगों में उनकी बहुत स्पष्ट शब्दों में उन्होंने गुरुदेव ने उनको स्मरण किया है। मैं आपको गुरुदेव श्री के एक दो उद्गार बताना चाहता हूँ जो उनमें गुरुदेव श्री ने उनके बारे में व्यक्त किए उद्गार। जब उनका देहावसान हो गया और वहां पर सोनगढ़ में खबर पहुंची कि भाई वो निहाल भाई चले गए, तो गुरुदेव के मुंह से शब्द ये निकले थे, अरे आत्मार्थी ने मनुष्य जन्म सफल कर लिया है, स्वर्ग में गए और निकट भवी है, ऐसा गुरुदेव ने उस समय कहा। उसके बाद में जब एक बार जब उनकी प्रवृत्ति प्रकाशित होने जा रही थी, उस समय गुरुदेव ने एक वाक्य किया, कहा था कि भाई न्यायचंद सोगानी आत्मा न संस्कार सारा दैन देह चुके थे, मैंने उन्होंने आत्मा का संस्कार बहुत अच्छी तरह से लिया है और उनका देह उसके बाद छूटा है। एक बात गुरुदेव ने जो उनके संबंध में कही है वो तो बहुत ही बहुत मार्मिक है, और बल्कि यहाँ तक कह रहे हैं गुरुदेव कि सोगानी जी वैमानिक देव में गए हैं, वहां से निकल कर मनुष्य भाव प्राप्त कर झपट करेंगे। झपट करेंगे का मतलब ये कह रहे हैं कि वो मेरे से पहले मुक्ति में जाएंगे, और जब मैं तीर्थंकर भाव में चौथे भाव में मुनि दीक्षा के समय सर्व सिद्धों को नमस्कार करूंगा तब मेरा नमस्कार उन्हें भी प्राप्त होगा। बताइए मैंने कैसे गुरु हैं और कैसे शिष्य हैं, और गुरु कह रहे हैं कि शिष्य को मेरा नमस्कार जाएगा, ये ऐसा जो विशेष बात है वो गुरुदेव श्री ने उनके संबंध में प्रकट किए हैं। उद्गार सोगानी जी ने जो उद्गार गुरुदेव श्री के लिए प्रकट किए हैं वो भी कोई कम नहीं है। स्वामी जी के लिए वो सोगानी जी ऐसा कहते थे कि ये तो हमारे लिए अनंत तीर्थंकरों से भी ज्यादा उपकारी है। बताइए इसका क्या मतलब हो सकता है? क्यों? क्योंकि जो अनंत तीर्थंकर हुए हैं भूत काल के हुए हैं भविष्य काल के हुए हैं उनसे हमारा कोई हमको उनका साक्षात को योग मिला नहीं है, उनसे हमने को साक्षात सुनने को मिला नहीं है। हमको तो जिससे सुनने को मिला और जिसकी वाणी हमारी संगति प्राप्ति में निमित्तभूत बन गई वो हमारे लिए अनंत तीर्थंकरों से ज्यादा उपकारी है। मैंने वो तीर्थंकरों से बड़े हैं ऐसा नहीं कह रहे, लेकिन उपकार तो हमारा वो सब उनका उपकार तो हमको हुआ नहीं है, लेकिन इनका हमको साक्षात उपकार हुआ है, इसलिए ये हमारे को तीर्थंकरों से भी ज्यादा है ऐसा उनकी धारणा रही है। उन्होंने एक बात आपको बताऊंगी, जो सोनगढ़ के कुछ पत्र व्यवहार सोनगढ़ के सागर नियों के साथ में और दूसरे मनुष्यों के साथ में उनके पत्र व्यवहार देते थे, जनवृत्ति प्रकाश में उनके कुछ पत्रों का भी संकलन है, उसमें गुरुदेव श्री के लिए ऐसे ऐसे संबोधन किए हैं उन्होंने, मैंने भगवान ऐसा भी एक जगह से उन्होंने लिखा हे भगवान, मैंने गुरुदेव श्री को भगवान की संज्ञा दी है। लेकिन मैं कुछ आपको उनकी विशेषण बताता हूँ, गुरुदेव श्री को उन्होंने कैसे कैसे संबोधन दिए। महाराज श्री भव्य दिव्य मूर्ति, गरजती हुई दिव्य मूर्ति, परम कपाली, परम पूज्य, परम अद्भुत, जीवन उद्धारक, जन्म मरण रूपी रोग से रहित करने वाले योगीराज, अनादि अनंत आयु के धारक चैतन्य, परम कृपालु उपकारी, सर्वश्रेष्ठ नेता, मुक्ति दूत, अलौकिक सत्पुरुष, पूज्य परम उपकारी, परम पूज्य महान योगी, आत्मरक्षे ओतप्रोत वक्ता, हे प्रबोध, साक्षात चैतन्य नेति, आना ज्ञानानंदी गढ़, ईशराज प्रधानी, ज्ञान आनंद की खान, अपूर्व सत्पुरुष, अलौकिक पूज्य, सर्वस्व के देने वाले परम उपकारी परम निर्भय इन स्वरूप ईशन करके भी अधिक सत्पुरुष मुक्तिनाथ एक संबोधन से उनका थोड़ा सा लौकिक जैसा लगता है। उन्होंने कहा परम पिताश्री, मैंने उन्होंने उनको अपने पिता के स्थान पर भी गुरुदेव को उन्होंने मान्य किया और उनको उन्होंने याद किया है, स्मरण किया है। मैं आपको बताना चाहता हूँ नियति बहन है क्या नहीं आज? हेलो,
नियति बहन
हाँ जी, हाँ जी
है,
हाँ हाँ जी, जय जिनेंद्र,
जय जिनेंद्र, जय जिनेंद्र। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि वो जो उनका जीवन है वो जीवन के कुछ से पहले मैंने आपके सामने अभी जन्नत के पूर्व के भी रखे, उसके बाद के भी हम कुछ उनके जीवन के जीवन पर दृष्टिपात करते हैं। सम्मत तो उनको प्राप्त हो गया, उन्होंने अपने सम्मत की घोषणा नहीं करी, यहाँ तक कि जिन गुरुदेव जी के वचनों को सुन करके उनके निमित्त से उनको सम्मत हुआ, गुरुदेव को भी बताने में उनको अत्यंत संकोच होता रहा। उन्होंने गुरुदेव जी को भी नहीं बताया, कोई दूसरे सागर जी ने उनसे कहा यही आप गुरुदेव को क्यों नहीं बता रहे हो, गुरुदेव जी के माध्यम से तो आपको बोध की प्राप्ति ही है, फिर आपको ये गुरुदेव को बताना चाहिए, गुरुदेव को सुनकर के अच्छा लगेगा। उन्होंने मालूम क्या कहा? उन्होंने ऐसा कहा कि जाने नहीं जाने इससे आत्मा को कोई फायदा नहीं है, अनंत सिद्ध हो गए हैं, आजकल कोई उनके नाम तक तो नहीं जानता है, असंख्य संगत दृष्टि तुरंत ढाई द्वीप से बाहर मौजूद हैं, शैंभू रमन समुद्र में, उन्हें कौन जानता है। उनका ये उत्तर जो है ये इस बात को बता रहा है कि वो संगत हो गया, उसके आनंद में मत थे, उस संगत की घोषणा करके उसका उसको उसके आनंद की उनकी दृष्टि में कोई कीमत नहीं थी, उसकी उनके सम्मान की या उस सम्मान की लोग उनको जानते, आज के लोग बहुत जानते हैं, हम उनका जन्म शताब्दी मना रहे हैं, उसे मना रहे हैं, ये नालबाई के कारण नहीं मना रहे हैं, वो सम्मत को प्राप्त करने वाले ऐसे एक अद्भुत रत्न थे और उस सम्मत की महिमा के कारण से निहाल भाई की महिमा का हम गान कर रहे हैं, ना कि निहाल भाई को, निहाल भाई से हमको क्या लेना देना, लेकिन उन्होंने सम्मत को प्राप्त किया और ये सम्मत को प्राप्त क्योंकि हमको भी करना है तो ये भी हमारे को समझ में आ जाए कि वो निहाल भाई के पंचिन्हों पर चल करके हमको भी कुछ सम्मत की प्राप्ति का कोई मार्ग मिल जाए, ये हमारा एक उद्देश्य हो सकता है। लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये सम्मत प्राप्ति का जो मार्ग है ये कोई नकल का मार्ग नहीं है, जो पद्धति से उनको सम्मत की प्राप्ति हुई निहाल भाई को और वैसे ही हम भी करने लगे, वैसे ही खान पान करने लगे, वैसे ही चलना फिरना करने लगे, वैसे ही अपना हम जीवन बना ले गए तो कोई हमको सम्मत की प्राप्ति हो जाएगी, ये कोई सम्मत प्राप्ति का मार्ग नहीं है। उनको सम्मत समिति के 10 नंबर के कमरे में हुई सम्मत की प्राप्ति, तो वो 10 नंबर के कमरे में जाकर के हम भी बैठ जाए जहाँ पर वो बैठे थे और जैसे हम भी अभी ध्यान लगा करके बैठ जाए रात भर तो क्या हमको सम्मत हो जाएगा? सम्मत प्राप्त करने के लिए जो पात्रता चाहिए है, जो अंतरंग जो पात्रता है, जो 5 लब्धियों का प्राप्ति करने का उपाय है, वास्तव में तो वो है, हम उनसे दिशा निर्देश से ले सकते हैं और उससे उसे हम सीख भी ले सकते हैं, इसमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन नकल करने वाली बात नहीं है, भावना से वो बात अंदर से आनी चाहिए, ये एक वास्तविकता है। और जो उनके बहुत जीवन में से उनकी बहुत चर्चा वार्ता तो होती रही है उनको, लेकिन उससे पहले तक लोगों ने भी उनको ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, लेकिन अंतिम समय में जब सन 1962 की बात है, उस समय जब सोनगढ़ में वो गए और दूसरी जगह भी लोगों ने जो उनके साथ में प्रति चर्चा करी, सागर जी के साथ में उनको बहुत प्रेम था, वो ऐसा नहीं चर्चा नहीं करते थे, यद्यपि एकांत उनको बहुत प्रिय था, लेकिन वो एकांत लौकिक जनों की उनको एकांत चाहते थे, लेकिन जैसे कोई साधर्मी है तो सागर जी के साथ में कोई चर्चा करना हो, मंदिर से निकले हैं और चर्चा करते हुए बात करते हुए जा रहे हैं, तो कहो तो वो सड़कों के किनारे घंटों चर्चा करते रहते थे। तो उनके घर में आ जाए तो कभी उन्होंने सबसे चर्चा के लिए मना नहीं किया। ऑफिस से आए हैं थके हारे और उसके बाद में कोई घर में आ गया कोई चर्चा करने लगा, तो उन्होंने कभी इस बात के लिए मना नहीं किया कि नहीं भाई मैं तो थका हुआ हूँ, अपन इसकी बात कल करेंगे, ऐसा कभी नहीं किया। मैंने सबको क्या उनके साधारणी का प्रेम सत्य का प्रेम से बहुत गहरे गहरे तक उनको इस सत्य का प्रेम था और एकांत वास भी उनको बहुत प्रिय था। उन्होंने अनेक जगह पर ऐसा लिखा है कि मेरे को दो चार घंटे दिन भर में यदि मुझे एकांत नहीं मिलता है तो मेरे को मालूम नहीं कैसा कैसा होने लगता है। मैंने वो एकांत से उनको बहुत प्रिय था और उनकी ऐसी अंतर्मुखी दशा उनका ऐसा प्रेम अनेक स्थल पर एक दीवानी पर उनको बहुत प्रेम था। बहुत स्वाध्यायी थी, बहुत स्वाध्यायी थी और दीवानी उनके पास में बहुत इकट्ठी हो गई थी। एक बात मैं आपको बताता हूँ कि उनका जो लौकिक जीवन था वो कोई बहुत समृद्धिशाली हो ऐसा नहीं था, कोई करोड़पति नहीं थे, वो साधारण परिवार था, बहुत बड़ी स्थिति नहीं थी। इसीलिए तो उनको अजमेर से कोलकाता भी उनको जाना पड़ा था, तो वो आजीविका की एक व्यक्ति थी। यहाँ पूरा परिवार उनका अजमेर में था, लगभग आठ बरस तक वो कोलकाता में अकेले रहे, लेकिन वहाँ पर भी उनको सत्य की रुचि तो हो गई थी। तो घंटों एकांत में रहते थे, जब कभी दो चार दिन की छुट्टी हो, ऑफिस नहीं जाना हो और कोई दूसरा काम नहीं हो, तो चार चार दिन तक वो कमरे से बाहर नहीं निकले। खाने के लिए भी थाली आ जाती थी और वो थाली को वो नीचे के दरवाजे के नीचे से खटका देती थी बाहर, बस थाली खा लिया और कोई लेना देना नहीं, किसी से कोई व्यवहार नहीं, कोई बातचीत नहीं। मैंने इतना वो अंतर्मुखी व्यक्तित्व वाले धनी थे। जिनवाणी की मैं आपको बात बता रहा था कि जिनवाणी उनके बाद में बहुत इकट्ठी हो गई, किराए का मकान था, अब वहाँ पर उतनी जगह नहीं थी और इतनी कैसे रखे थे, उनकी पत्नी थोड़ा सा ये बात उन्होंने कहा कि भैया किताबों में कहाँ रखेंगी, पत्र पत्रिकाएं बहुत आती थी, विदेश से प्रयत्न जो उस समय करते थे अपने साइकिल स्टाइल के रूप में, वो पेपर आते थे, वो सब बहुत मतलब सामग्री साहित्य की इकट्ठी हो गई। तो उनके बारे में उनकी पत्नी ने उनको एक बार छोटे इशारा किया इसका, तो उन्होंने जो उद्गार अपनी पत्नी से व्यक्त किए थे वो उन्होंने ऐसा कहा कि देखो घर में जगह बनाने में उनकी धर्म पत्नी को बड़ी असुविधा होती थी, ऐसे संयोगों में अत्यंत भावुक होकर उन्होंने कहा अरे यही तो मेरी पूंजी है और बच्चों के लिए यही तो विरासत में छोड़कर जाऊंगा, आचार्यों के इन्हीं शास्त्रों से तो आनंद रथ बूंद बूंद कर टपकता है। देखो वो जिनवाणी के प्रति उनके हिस्से में इतना श्रद्धा का बहुमान था, वो इस बात के लिए बता रहा है, ऐसा जिनवाणी प्रेम था। मैं आपको ये बता रहा था द्रव्य दृष्टि प्रकाश जो प्रकाशन है वो उनकी मुख्य रूप से 1962 और 1963 में उनकी जो सत्य चर्चाएं हुई, तो साधारणियों ने उनकी सत्य चर्चा के कुछ बिंदु नोट कर लिए। ये नोट किए हुए जो बिंदु हैं उसके आधार पर ये द्रव्य दृष्टि प्रकाश तैयार हुआ था और इसकी बहुत मतलब महिमा भी बहुत हुई है। ये द्रव्य दृष्टि प्रकाश से जब बाहर आया था तो वो जो मूर्तियों ने लिखा था तो उन्होंने गुरुदेवश्री से भी पूछा पहले कि गुरुदेवश्री हम इसका प्रकाशन करना चाहते हैं, तो गुरुदेवश्री ने ये कहा कि ठीक है छपाओ। उन्होंने गुरुदेवश्री ने देखा भी, लेकिन जब उनका ये पुस्तक आई है उस समय द्रव्य दृष्टि प्रकाश को गुरुदेवश्री ने पब्लिकली इसको बिक्री में नहीं रखा, इसको वो अपने पास रखते थे गुरुदेव, और गुरुदेव उनको एक एक पुस्तक ऐसे लोगों को देते थे समझ करके कि इनकी पात्रता है क्या, इनकी योग्यता है क्या। मुझे अभी किसी ने बताया कि ये पुस्तक उनके परिवार में ही छपाई थी, उनके बच्चों ने या इनने उसका किया था संग्रह और उनमें छपाई थी, लेकिन गुरुदेव श्री के पास में उनकी पत्नी वो पुस्तक लेने गई तो गुरुदेव श्री ने उनको उस समय मना कर दिया कि नहीं तुम्हारी यही पात्रता नहीं, गुरुदेव श्री ने उनको नहीं दी। और यहाँ वहाँ की बात हुई तो बहुत वो रोई उनकी, भाई हमको किस पर गुरुदेव श्री क्यों नहीं दे रहे थे। फिर गुरुदेव ने उनको ये बोल करके पुस्तक दी थी कि तुमको दे रहा हूँ लेकिन अलमारी में बंद करके रखना, बच्चों के हाथ में नहीं लग जाए। ये सोचने की बात ये है कि गुरुदेव श्री के चित्र में इसके लिए बहुत आपके लिए बहुत कॉमन हो गई ये बात, इसलिए वो बात अब नहीं रही है। लेकिन गुरुदेव श्री को अंदर में ऐसा डर लगता था कि समाज में रहते हुए बहुत विरोध है और ये गर्भ वृत्ति की बात है, कड़क बात है इसमें, और कड़क बात होने से लोग इसका क्या पता कैसा विरोध करेंगे क्या नहीं करेंगे। इसलिए जो है गुरुदेव बहुत सोच सोच से समझ करके ये पुस्तक को उनके हाथ में जाने देते थे, ऐसा ये मैंने इसका इतिहास है। सांसारिक वृत्ति तो उनमें बिल्कुल नहीं के बराबर है, यद्यपि उनके 22 वर्ष की उम्र में उनका विवाह हुआ था, उनके 5 पुत्र हुए थे, 3 पुत्रियां हुई थी, 8 मने बालक थे उनके, और उनके परिवार में 4 भाई थे, 1 बहन थी। 4-5 पुत्रों में एक बड़े पुत्र से छोटी उम्र में ही उनके गुजर गए थे, और ये 3 पुत्रियां भी विवाह के बाद में कुछ समय तक रही, अब आज वो पुत्रियां भी नहीं है, लेकिन अभी उनके 4 पुत्र आज भी उनके जीवित हैं। और जो रमेश भाई जी हैं उनके बड़े पुत्र, वो ही अभी यहाँ पर अभी मंगलाचरण में यहाँ पर एक उनका जन्म शताब्दी का वर्ष मना रहे हैं, और उनका पूरा परिवार और सब लोग यहाँ पर भी आने वाले हैं। अभी 21-22 को 3 दिन का यहाँ पर बड़ा फंक्शन है, और उसमें आप लोगों से कोई आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं मुझे नहीं मालूम, लेकिन
हमारे वो हो गया, आ रहे हैं हमारे लास्ट वीक उनका हो गया रमेश भाई,
आ रहे हैं
नहीं लास्ट वीक, लास्ट वीक हो गया।
अच्छा अभी समय हो गया अपना। हेलो
हाँ हाँ
जीना बहन, अपना समय हो गया
जी, 5 मिनट है
जी। अच्छा तो अभी इसके और बहुत सी बातें हैं मेरे को आपको बताने के लिए भी। एक उन्होंने निर्विकल्प दशा का बहुत सुंदर वर्णन किया है, निर्विकल्प दशा का, और वो वर्णन उनका जो मिलता है वो उनके कई पत्र में उनका वर्णन, पत्र नंबर 14 में उसका वर्णन है। और वो निर्विकल्प दशा के बारे में जो उन्होंने वर्णन लिखा है, ऐसा लगता है कि यदि ये तो निहाल भाई ने लिखा है अपने को मालूम है, लेकिन यदि इस वाक्य में कहीं पर ये ना लिखा हो तो आप ऐसा नहीं लगेगा आपको कि ये कोई भावलिंगी मुनिराज सतीश आदि स्थान में घूमने वाले मुनिराज का वचन है, उनका प्रयोग है या निहाल भाई का प्रयोग है, आप फर्क नहीं कर सकते हैं। जैसे मैं आपको इसको पढ़ के सुनाना चाहता हूँ, निर्विकल्प दशा के संबंध में उन्होंने कितने सुंदर शब्दों में इसको अभिव्यक्ति दी है। अरे बिना विकल्प का पूरा आनंद ही आनंद, विकारी गुब्बारे को पूर्ण फुलाए बिना अब एक क्षण भी चैन नहीं है, ध्यानस्थ अवस्था में बैठा हुआ अथाह ज्ञान समुद्र वो इसमें सहज पीली, ऐसा अनुभव मानो मैं हूँ, आनंद की भूत दिए जा रहा हूँ। अरे व्यक्ति आनंद से चित होने लगी, पर जाहिर पुरुषार्थ उन्हें साथ रही उग्रता का संकल्प किया, माने अथाह की था सदैव के लिए एक बार में ही पूरी ले लेगा, प्रदेश प्रदेश व्यक्त कर देगा, सहज आनंद से एक क्षण भी नहीं हटने देगा। पर अरे रे योग्यता, तूने पूर्णता के संकल्प का साथ नहीं देकर अंत में चित करा ही तो दिया, तो फिर इसका दंड भी भुगतना पड़ेगा। तो ये ऐसा उन्होंने अपनी निर्विकल्प दशा के संबंध में उन्होंने वर्णन किया है। एक बात और बताना चाहता हूँ आपको कि उनकी जो बहुत जीवन में बड़ी अंतर्मुखी अवस्था रहती थी, मैंने उनका जीवन एकदम अस्त व्यस्त होता था, मैंने उनको कपड़ों की सुध नहीं, बच्चों की सुध नहीं, खाने में क्या दिया नहीं दिया, ये ऐसी उनके जीवन की निद्रा के संबंध में ऐसा वो लिखते हैं कि बहुत अल्प निद्रा हो गई थी, सोते समय जाए सोने को घंटे दो घंटे बाद के नींद आ गई और उसके बाद में थोड़ी सी नींद होने के बाद में फिर नींद निकल जा रही है। यानी ऐसा उनका बहुत जीवन था। एक बार की बात है कि मुंबई में एक उस समय वो थे, मुंबई में इस समय वहां पर थे, तो मुंबई में उनका भोजन एक कोई मनुष्य के यहाँ उनका भोजन था, तो वहाँ भोजन करने के लिए वो बैठे, तो वो भोजन किया और सब लोग और दूसरे साथी भी थे, उन्होंने भोजन के बाद में उठ गए और उन्होंने देखा तो वो रसोइये ने वरमालक से बोला भाई ये व्यक्ति कौन थे, वो बोले भाई ये निहाल भाई थे अपने उनका भोजन था अपने यहाँ। लेकिन मैंने अपने जीवन में हजारों लोगों को भोजन कराया होगा, लेकिन एक प्रतिमा को पत्थर की प्रतिमा मानो, प्रतिमा को भोजन मैंने पहली बार जीवन में कराया। मैंने ऐसा उनका जो अंतर्मुखी व्यक्तित्व था, वो अंतर्मुखी व्यक्तित्व को लेकर के वो एक रसोइये की ये वृत्ति रही जिसने कहा, ऐसा उनका बहुत जीवन रहा है। एक सांसारिक प्रसंग की बात आपको बताना चाहता हूँ कि उन्होंने जब उनके पुत्र का विवाह था, उस विवाह के प्रसंग में विवाह व्यवहार के कारण निभाना पड़ता है, तो उन्होंने पुत्र के विवाह की पत्रिका छपाई और उनके लिए वहाँ सोनगढ़ में भी, अब उनका तो बहुत घनिष्ठता थी, तो उनके मन में आ रहा था कि मैं सोनगढ़ में पत्रिका भेजूँ कि नहीं भेजूँ। दो पत्रिकाएं उनने सोनगढ़ में भेजी थी उस समय, लेकिन इस टिप्पणी के साथ में, ये वाक्य के साथ में उन्होंने वो पत्रिकाएं भेजी कि बड़े पुत्र की शादी 16/4/1962 को है, पुण्यवानों को शुभ प्रसंग का योग है। मैंने आपको मैं सोनगढ़ में हम पत्रिका भेज रहे हैं, वहाँ पर तो आपके गुरुदेवश्री का योग है, आप वहाँ पुण्यवान हैं और आपके पुण्यवानों को शुभ प्रसंग का योग है, उन्हें अशुभ प्रसंग पर बुलाना ठीक नहीं है, फिर भी लौकिक व्यवहार वश दो पत्रिकाएं भिजवा रहा हूँ, धन्यवाद। ऐसा कहकर के उन्होंने वो दो पत्रिकाएं भेजी थी। ऐसा एक महापुरुष भी हम कह सकते हैं, ऐसे महापुरुष का हमको साक्षात योग तो नहीं दिया है, लेकिन वो महापुरुष का जो जीवन है वो देख करके और उनका जो ये जो द्रव्य व्यक्ति की जो एक बहुत विशेष बात जो है, जो उनकी देन रही है, विशेष रूप से उनकी देन रही है, उसकी बात को जो उन्होंने उसको प्रदान करने वाले हैं, ऐसे निहाल भाई के चरणों में मैं सागर वंदन करता हुआ अपनी बात को यहीं पर विराम देता हूँ। आप लोगों को यदि कोई बात करना हो तो आप कर सकते हैं।
हाँ, किसी को अगर कुछ भी क्वेश्चन है तो हम एक क्वेश्चन दे सकते हैं।
रजनी भाई है क्या? नहीं,
हाँ रजनी भाई ना आज नहीं है, कुछ प्रसंग हुआ है तो वो आज नहीं आ सके हैं।
जी हाँ जी, कोई बात नहीं।
ये नियाल चंद भाई को जब उनको सम्यक दर्शन हुआ, फिर गुरुदेव को के किसी को पता कैसे लगा कि उनको हुआ है?
नहीं, वो तो गुरुदेव को तो पता चल गया था, लेकिन उनसे ये पूछा था कि भाई आप कुछ ऐसी बात बताओ जो हम गुरुदेव को बताएंगे, तो उस समय उन्होंने ऐसा कहा था कि भाई ये बात को मेरे को कोई बताने में कोई बहुत ज्यादा रस नहीं है, पर इसको बताने का कोई क्या बात है, बस मेरे को सम्यक दर्शन हो गया, आनंद आ गया, मजा आ गया।
हाँ।
बाद में तो गुरुदेव को तो पता चला ही है।
हाँ।
और गुरुदेव ने उनको बहुत समय समय पर स्मरण भी किया है, प्रवचनों में गुरुदेव के बहुत उनका नाम आता है।
हाँ हाँ हाँ, वो तो है। हाँ।
जी हाँ।
अच्छा, आपका बहुत ही धन्यवाद राकेश जी, और अभी हम अगले महीने मिलेंगे तो, और द्रव्य दृष्टि प्रकाश डिस्ट्रीब्यूट होएगी, मगर इसका इन्फॉर्मेशन हम हमारी वेबसाइट पर नजदीक में डालेंगे, जब वेबसाइट में आ जाएगा तो अनाउंसमेंट होएगी, वहाँ आप अपनी
रिक्वेस्ट। मेरे को लगता है ये वेबसाइट में होना चाहिए, वेबसाइट में होगी पहले से ही।
वेबसाइट तो है मगर इनो के बेटे ने बोला है कि वो सबको ना प्रेजेंट करेंगे, तो उसकी इन्फॉर्मेशन ना हमारी वेबसाइट में रखेंगे, तो फिर लोग अपना नाम फिल कर कर हमें भेजेंगे, तो फिर उनको ना ये मेल में आ जाएगी। और सुगानी जी की सीडी भी वगैरह उन्होंने बोला है कि वो भेजेंगे इंडिया, मगर अभी हमारा जो फॉर्म है वो रेडी नहीं हुआ है, तो नजदीक में रेडी हो जाएगा, तो फिर सब अपने अपना फॉर्म फिल कर कर हमें भेजेंगे, तो फिर मे बी बाई नवम्बर के दिसंबर वो सबके हाथ में द्रव्य दृष्टि प्रकाश भी आ जाएगा। तो बस हम भिनवाणी स्तुति कर कर फिर हम हमारा सेशन समाप्त।
करिए करिए करिए, अभी मेरे पास में तो कोई है नहीं, बच्चे लोग आपको ही करना है। पंक्ति ऐसी बोलते हैं, निज निधि निज निधि बसाई, यह अनंत उपकार है, इसके लिए जिनवाणी माँ को वंदना सत्यवार है, वंदना सत्यवार है। बोलो दिनवाणी मात नो जय हो।
राकेश जी एक विनंती है आपसे, राकेश जी जो अलीगढ़ में जो अभी मंगलायतन तीर्थधाम मंगलायतन में जो प्रोग्राम होने वाला है, तो हम क्या फोन से सुन सकेंगे एक आध दो प्रवचन?
अभी यहाँ पर जितने भी प्रवचन हो रहे हैं नेट पर डाल रहे हैं, हेमंत भाई आए हुए हैं, हेमंत भाई
आ गए हैं। अच्छा,
तो सारे नेट पर डाल रहे हैं।
लाइव नहीं, मतलब हम लोग मुमुक्षु को लाभ लेने को भाव है, तो ऐसा करेंगे हम आपसे या अशोक जी से हम बात कर लेंगे, तो थोड़ा आप भी वहाँ ही हो ना अभी, तो एकदम हाँ, तो हम
मंगलायतन में नहीं,
हाँ
जी से बात कर लेंगे,
हाँ ताऊ जी से कर लेंगे, हाँ बहुत बहुत अच्छा।
और वो इसकी व्यवस्था भी कर रहे हैं, पवन जी करवा रहे हैं, दिवाली अभी से भी आप बात कर सकते हैं।
हाँ जी। और हमारे वहाँ से अभी कोई नहीं आ रहे हैं, क्योंकि वो थोड़ा इन बिटवीन ईयर होता है ना, तो सभी लोग निकल नहीं सकते हैं, लेकिन पहले से मालूम होता तो थोड़ा प्लान कर लेते, लेकिन अभी अगली बार करेंगे।
ठीक है, धन्यवाद।
हाँ नहीं नहीं, आपका धन्यवाद। अच्छा जय जी,
ठीक है।